लोगों को देखा है कि जो हमारी दुनिया के हिसाब से कोई कार्ड पकड़ लेते हैं और मुल्क छोड़ के कहीं जा रहे होते हैं, देखा होगा कितनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी की कमाई को बेच रहे होते हैं, सही, बाद औकात मां बाप के घरों को बेच रहे होते हैं, अपनी निशानियां बेच रहे होते हैं, क्यों बेच रहे होते हैं? तो वो ये कह रहे होते हैं कि हम एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा, ये मालूम है कि ये सरासर धोखा भी हो सकता है। अच्छा, मुस्तकबिल तो क्या होगा, बाद में शायद नाउज बिल्लाह ताला रोना पड़ जाए इसके ऊपर, ऐन मुमकिन है। मैंने रोते देखा, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, रोते देखा। एक अजीब बात याद आ गई मुझे, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज जरूर करता हूं। एक साहब मुझे पाकिस्तान से बाहर मिले, फिर कोई बार बार चीजें ऐसी आ जाती हैं जो मुझे अपना मामला भी कहना पड़ता है। तो मैं जब चंद आयजा दुनिया से गए, पहले मैं कब्रिस्तान इतना नहीं जाता था, लेकिन जब मेरे कुछ अपने आयजा गए जिनसे मेरा दिल बहुत नजदीक था, तो जाहिर है मुझे फिर जबरन जाना पड़ा, तो मैं वहां जाने लगा। तो फिर मुझे ऐसे लोग भी मिलने लगे कि जो ज्यादा कब्रिस्तान आते जाते हैं। तो फिर मुझे पाकिस्तान से बाहर एक साहब मिले जिनका इसी टाइप का एक इंटरेस्ट था कि वो कब्रिस्तान जरूर आते जाते थे। तो उन्होंने बताया कि मौलाना, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं, मैं अपने सारे रिश्तेदारों की कब्रों को जाता हूं, खाला खालू चाचा चाची जो भी, सबकी कब्रों को जाता हूं। तो उन्होंने बताया, तो ये सब बातें कहने के, फिर उन्होंने थोड़ा सा रोना शुरू किया, कहने लगे मौलाना मुझे यहां आने की सजा मिली है। हमने उनसे मेरी मुलाकात शायद कनाडा में हुई थी, इस टाइप का उन्होंने, अलबत्ता जब हम ये बात सुना रहे होते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहे होते, मतलब जब उन्होंने क्या कहा होगा एग्जैक्ट यही कहा होगा, लुबे लुबाब ये होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ इस तरह, लुबे लुबाब क्या था, मुझे यहाँ आने की सजा मिली। मैंने पूछा क्या हुआ, कहेंगे मौलाना मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ ना, साल में एक दफा, जब भी मैं हर बंदे की कब्र पे जाता हूँ, सही है, लेकिन एक दफा मैं गया तो मेरे वालिद की कब्र नहीं थी। मैंने कहा क्या मतलब, कहेंगे मौलाना उनकी कब्र में किसी और को दफना दिया था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कहेंगे आपको पता है पाकिस्तान में जो पुराने कब्रिस्तान थे वहां ये हो जाता था, दफना देते। कहेंगे मुझे बार बार ये जहन में आ रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान से नहीं गया होता ना, फिर ये नहीं हो सकता था। क्योंकि गोरखन क्या करते हैं, ये देखते हैं कोई खबर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है इसका, तो मसलन चार महीने पांच महीने खबर गिर गई है, कोई देखने वाला नहीं, तो समझ जाते हैं कि ठीक है इसका, अब साल में एक दफा आता है बंदा खुदा, वो कोई काम नहीं कर रहा होता। तो उस बंदे ने बड़ी तड़प के मुझे ये कहा कि मौलाना मुझे सजा मिली, मुझे यहाँ आने की सजा मिली। इस तरह के वाकयात मैंने बहुत सुने, कबर के नहीं, दूसरे और मामलों के, कबर का भी एक सुना, तो उसने कहा कि क्या मुझे खासकर मेरी मेरे वालिद की कबर के साथ क्यों हुआ, इस वजह से कि मैं कबर पे हसास था, अगर मैं कबर पे हसास नहीं होता तो शायद मेरे साथ ना होता, ये खुदा ने मुझे दिखाया, जिस चीज पे मैं हसास था वही मेरे हाथ से गई, सही है। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी वालदैन की मैयतों पर ना आते देखा है, बाद में रोते देखा है, इस पे रोते देखा है कि हम बच्चों को लेके वहां चले गए, हमारे बच्चों का दीन ही खत्म हो गया, अब ना हम वापस जा सकते हैं ना बच्चे जा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, इतने तजर्बे हो गए काफी नहीं है, फिर वही तजर्बे करना क्यों इस मुसीबत में डाल रहे हैं? अच्छा, किस लिए, वही मसला वही, कमाई करनी है, अच्छी जगह पे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, हमें मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, हमारे बच्चों की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे दाखिले मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंबी मुद्दत का सोचो, थोड़ा सा लंबी मुद्दत सोचो। इमाम ने जो मिसाल दी है वो ये मिसाल दी है कि फर्ज करो एक इंसान है, एक बयाबान में रह रहा है, एक बयाबान में रह रहा है, और उसने कोई जगह तैयार की है जो बहुत सरसब्ज शादाब है, सही, बड़ी सरसब्ज और शादाब उसने एक जगह तैयार की है, कहीं दूर रहता अभी बयाबान में है, और मिनट्स गिन रहा है कि कब जाने का वक्त आए और मैं उस आबाद जगह में जाके रहूं, सही है। इमाम फरमा रहे तुम्हें मौत का ऐसे मुश्ताक होना चाहिए, तुम्हें मौत का ऐसे मुश्ताक होना चाहिए, तुम्हें अपनी आखरत को इतना ही आबाद कर लेना चाहिए कि तुम्हें यह पता हो कि यह दुनिया बर्बादी है, यह आबाद नहीं है, यह दुनिया बयाबान है, असल आबादी वहां है, असल जिंदगी वहां है, और मैंने अपना असली सरमाया वहीं पर मुंतकिल कर दिया है। जब तक तुमने सरमाया मुंतकिल नहीं किया है ना, तुम्हारा दिल वहीं अटका रहेगा जहां तुम्हारा सरमाया लगा हुआ है। जब तक सरमाया दुनिया में लगा हुआ है, इस दुनिया में, दिल यहीं अटकेगा, और जिस दिन सरमाया आगे जा चुका है तो फिर कहां दिल अटकेगा, वहां अटकेगा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा सरमाया कहां पर है, तुम्हारी जिंदगी का महासल कहां पर है। ये बहुत अजीब मिसाल है, खुदा के दीन ने हमें निशानियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मुश्किल हमारी है। سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اثر لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اہل دنیا کے ساتھ بیٹھ کر اہل دنیا بن جاتے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہی اس بیریئر کو توڑنے کسی طرح. وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ عمل کرو فوراً. آپ کے ذہن میں ایک فکر آئی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن صدقے کا ثواب ہزار گنا ہوتا ہے، فوراً اٹھو صدقہ دے دو، فوراً کچھ کرو. اگر کچھ نہیں کیا اگلی دفعہ یہ آواز نہیں آئے گی، کچھ کر لیا امکان ہے کہ اگلی دفعہ آ جائے گی. صحیح، یہ آسان کام ہے. اپنے ضمیر کی آواز کو تقویت دو، اس کو مرنے نہیں دیں، ورنہ پھر یہ نہیں آئے گی. دیکھو جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ان کو پہلے قتل پر ایک آواز آتی ہے، پھر نہیں آتی، پھر نہیں آتی، معاملہ ختم ہو جاتا. تو آپ اور میں اپنی دنیا میں رہیں لیکن آباد کریں آخر. یہ امام کا فرمان ہوا، یہ امام کا کلام. اور اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کو اس مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا آباد نہیں کرنی ہے، اصل میں ہمیں آخرت آباد کرنی ہے. البتہ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت آباد کرے گا، اس کی دنیا بھی اس سے اچھی آباد ہو جائے گی جو اہل دنیا آباد کرتے ہیں. اہل دنیا کیا آباد کرتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں جن میں اکیلے رہتے ہیں، روٹین روٹین، بڑے بڑے گھر بنائیں گے، اکیلے اکیلے رہیں گے، اکیلے اکیلے زندگی گزار کے اکثر غم اور غصے کے اندر ڈپریشن کی ٹیبلٹس کھا کے، بیماریوں کے علاج کر کرا کے فارغ ہو جائیں گے. عقل مند انسان کیا کرے؟ اللہ کی طرف بڑھے، آخرت کو آباد کرے، دنیا سے اتنا زیادہ دل نہ لگائے، یہ مصلحت ہو جائے گا.